करीब दो हफ्ते बाद न्यूलैंड आर्चर लेटर ब्लेयर लैम्सन और लो के दफ्तर में अनमना बैठा था कि फर्म के प्रमुख ने उसे बुलवाया। तीन पीढ़ियों से न्यूयॉर्क के ऊंचे समाज के कानूनी सलाहकार मिस्टर लेटर ब्लेयर महोगनी की मेज के पीछे उलझन भरे चेहरे से बैठे थे। वे अपनी छोटी कटी सफेद दाढ़ी सहलाते और घनी भौहों के ऊपर बिखरे भूरे बालों पर हाथ फेरते। युवा साझेदार सोचता था कि वे उस डॉक्टर जैसे लगते हैं जो बीमारी का नाम न पकड़ पाने से चिढ़ा हो। मेरे प्रिय महोदय, वे आर्चर को हमेशा महोदय कहते, आज एक मामले पर बात करने के लिए बुलाया है। ऐसा मामला जिसका जिक्र अभी मैं न स्किप वर्थ साहब से करना चाहता हूँ न रेडवुड साहब से। ये दोनों फर्म के बाकी वरिष्ठ साझेदार थे। न्यूयॉर्क के पुराने दफ्तरों की तरह यहाँ भी चिट्ठी कागज पर छपे नामों वाले साझेदार बरसों पहले गुजर चुके थे। पेशे के हिसाब से मिस्टर लेटर ब्लेयर खुद अपने ही पोते थे। माथे पर बल डाले वे कुर्सी से टिक गए और बोले, पारिवारिक कारणों से। आर्चर ने सिर उठाया। मिंगट परिवार, मिस्टर लेटर ब्लेयर ने समझाती मुस्कान और हल्के झुकाव के साथ कहा, कल श्रीमती मैनसन मिंगट ने मुझे बुलाया था। उनकी नातिन काउंटेस ओलिन्स का अपने पति से तलाक चाहती है। कुछ कागज मेरे हाथ आए हैं। वे रुके और मेज पर उंगलियां थपथपाईं। आप जल्द ही उस परिवार के रिश्तेदार होंगे, इसलिए आगे की राह आपसे मिलकर तय करना चाहता हूँ। आर्चर को लगा कनपटियों में खून दौड़ गया। काउंटेस के घर की उस मुलाकात के बाद उसने उन्हें बस एक बार देखा था, ओपेरा में मिंगट बॉक्स में। उनकी छवि मन में धुंधली पड़ती गई थी और मी वैलेंड ने सहज ही फिर बीचों बीच जगह ले ली थी। जेनी के यूं ही जिक्र छेड़ने के बाद तलाक की बात कान में नहीं पड़ी थी। उसने उसे बेबुनियाद अफवाह समझ झटक दिया था। उसूल तलाक का ख्याल उसे भी उतना ही नागवार था जितना उसकी माँ को, और ये बात खलती थी कि मिस्टर लेटर ब्लेयर जरूर बूढ़ी कैथरीन के कहने पर उसे इस मामले में घसीटना चाहते हैं। मिंगट खानदान में मर्दों की कमी न थी और वो अभी ब्याह से जुड़ा तक न था। वो वरिष्ठ साझेदार के आगे बोलने की राह देखता रहा। मिस्टर लेटर ब्लेयर ने दराज खोलकर कागजों का पुलिंदा निकाला। इन दस्तावेजों पर एक नजर डाल लीजिए। आर्चर ने त्योरी चढ़ाई। माफ कीजिए महोदय, उसी भावी रिश्ते के कारण बेहतर होगा कि आप स्किपवर्थ साहब या रेडवुड साहब से सलाह करें। मिस्टर लेटर ब्लेयर हैरान और कुछ आहत दिखे। कोई युवा साझेदार ऐसा मौका ठुकराए ये दुर्लभ था। आखिर उन्होंने सिर झुकाया, आपकी मर्यादा का सम्मान करता हूँ, पर इस मामले में सच्ची शालीनता वही है जो मैं कह रहा हूँ। वैसे भी ये प्रस्ताव मेरा नहीं, श्रीमती मैनसन मिंगट और उनके बेटे का है। मैं लवेल मिंगट से मिला हूँ, मिस्टर वेलेंट से भी। सबने आपका ही नाम लिया। आर्चर के भीतर झुंझलाहट उठी। पिछले दो हफ्ते वो घटनाओं के बहाव में बहता रहा था। मे की सुंदरता और उजास में डूबा मिंगट परिवार की अपेक्षाएं भूले हुए, पर बूढ़ी श्रीमती मिंगट का ये फरमान साफ दिखा रहा था कि खानदान भावी दामाद से क्या चाहता है, और ये भूमिका उसे भीतर तक अखरती थी। ये काम उनके मामाओं का है, उसने कहा। हो चुका, परिवार में मामला तय हो गया। वे काउंटेस के विचार के खिलाफ है, पर वे अडिग हैं और कानूनी राय पर अड़ी है। युवक चुप रहा, बिना खुला पुलिंदा हाथ में था। क्या वे दोबारा ब्याह करना चाहती हैं? कहते तो यही है, पर वे इनकार करती है। तब तो पहले ये कागज पढ़ लेंगे मिस्टर आर्चर, फिर बात करके मैं अपनी राय दूंगा। आर्चर बेमन से उन असुविधाजनक कागजों के साथ उठा। काउंटेस से आखिरी मुलाकात के बाद से वो आधे अनजाने हर उस चीज के हवाले होता गया था जो उसे इस बोझ से दूर ले जाए। अंगीठी के पास अकेले बीता वो घंटा दोनों को एक क्षणिक आत्मीयता तक ले आया था, जो सौभाग्य से ड्यूक और श्रीमती स्ट्रदर्स के अचानक आ धमकने और काउंटेस के उत्साही स्वागत से टूट गई। दो दिन बाद उसने काउंटेस को फिर वान डेर लॉयडन कृपा में जमा पाया और कड़वाहट से सोचा, जो स्त्री रसूखदार बुजुर्गों के गुलदस्तों का इतना सुंदर शुक्रिया अदा करना जानती है, उसे मुझ जैसे मामूली नौजवान की न निजी तसल्ली चाहिए न खुली वकालत। यो देखने पर सब सरल हो गया और घर गृहस्थी के पुराने गुण अचानक नई रोशनी में चमक उठे। वो कल्पना भी न कर सकता था कि मे वेलैंड किसी भी संकट में अपने निजी मामले लिए घूमे और अनजान मर्दों को राज सौंपे, और अगले हफ्ते में उसे पहले से कहीं अधिक कुलीन, अधिक सुंदर लगी। उसने लंबी सगाई तक मान ली क्योंकि मैं ने ऐसा कारण दिया जिसके आगे उसकी एक न चली। बचपन से आपके माता पिता ने हमेशा आपको मनचाहा करने दिया है, उसने जोर दिया। मैं ने अपनी सबसे निर्मल दृष्टि से उत्तर दिया, सच है, और इसीलिए तो उनकी छोटी बेटी के नाते की ये आखिरी विनती टालना मुझे इतना कठिन लगता है। यही न्यूयॉर्क की पुरानी आवाज थी, यही उत्तर वो अपनी पत्नी से हमेशा सुनना चाहेगा। जिसने न्यूयॉर्क की हवा में सांस ली हो उसे इससे कम पारदर्शी हर चीज दम घूंटती लगती थी। आर्चर जो कागज ले गया उनमें सच पूछो तो खास कुछ न था,
पर उन्होंने उसे एक घुटन भरे माहौल में लपेट लिया जहां कुछ हांफता सांस के लिए जूझता मालूम होता था। ज्यादातर कागज काउंट ओलेंस्की के वकील और उस फ्रांसीसी फर्म के बीच की चिट्ठियां थे जिसे काउंटेस ने पैसों के मामले सौंपे थे। साथ में काउंट की पत्नी के नाम एक छोटी चिट्ठी भी थी। उसे पढ़कर आर्चर उठा, कागज लिफाफे में ठूंसे और मिस्टर लेटर ब्लेयर के कमरे में लौट गया। ये रहे दस्तावेज महोदय,
आप चाहे तो मैं खुद श्रीमती ओलेंस्का से मिलने चला जाऊंगा,
उसने दबी आवाज में कहा। धन्यवाद मिस्टर आर्चर, आज शाम खाली हो तो मेरे साथ भोजन कीजिए, फिर बात करेंगे, कल की आपकी भेंट से पहले। उस दोपहर आर्चर सीधा घर गया।
जाड़े की शाम का आसमान निर्मल और पारदर्शी था
और छतों के ऊपर एक कोमल निष्पाप चांद चमक रहा था। वो उस शुद्ध हवा से जी भरकर सांस लेना चाहता था और लेटर ब्लेयर से मिलने तक किसी से बात नहीं करना चाहता था। फैसला तो जैसे हो ही चुका था, दूसरों के उनका राज जानने से पहले उसे खुद काउंटेस से मिलना था। करुणा की एक बड़ी लहर उसकी उदासीनता और अधीरता बहा ले गई। वे उसकी आंखों के सामने एक बेसहारा आकृति थी। किस्मत से आंख मूंद कर टकराई, घायल जिन्हें और पीड़ा से बचाना था। उसे याद आया कि श्रीमती वेलैंड ने काउंटेस के अतीत का अप्रिय हिस्सा उससे न कहने की विनती की थी और उसने सोचा कि शायद न्यूयॉर्क की शुद्ध हवा इसी रवैये से शुद्ध बनी रहती है। तो क्या हम सब आखिर बेईमान नैतिकतावादी ही हैं? वो मानवीय नीचता से सहज घृणा और मानवीय दुर्बलता पर दया के बीच झूल रहा था। पहली बार उसने देखा कि उसके उसूल अब तक कितने सीधे साधे थे।
वो जोखिम से न डरने वाला नौजवान माना जाता था और जानता था कि नासमझ श्रीमती थॉर्ली रशवर्थ से उसका गुप्त प्रसंग अफवाह बनकर उसे यकीन लायक जोखिमबाज की छवि दे गया था। पर श्रीमती रशवर्थ उसी किस्म की औरत थीं, नासमझ, दिखावटी, आर्चर के आकर्षण या गुणों से ज्यादा उस रिश्ते की गोपनीयता और खतरे पर रीझी हुई। जब उसने ये समझा तो बहुत दुखा, पर अब वही सच्चाई अजीब तरह से उस किस्से को बचाने वाली बात लगती थी। वो वही आम तजुर्बा था जो उसकी उम्र के मर्द एक बार से गुजरते थे और साफ जमीर लेकर निकलते थे, इस पक्के भरोसे के साथ कि जिस स्त्री से प्रेम और आदर करते हैं और जिससे मन बहलाते और जिस पर तरस खाते हैं उनके बीच खाई है। इस सोच में उन्हें माएं, मौसियां और बुजुर्ग रिश्तेदार स्त्रियां सहारा देती थीं। सब श्रीमती आर्चर की तरह मानती थीं कि ऐसा कुछ हो जाए तो मर्द ने बेवकूफी की, पर कसूर किसी न किसी तरह हमेशा औरत का होता है। उसकी जानी सारी बुजुर्ग महिलाएं ऐसी स्त्री को चालाक हिसाबी मानती थीं और मर्द को उसके पंजों में फंसा लाचार शिकार। इलाज एक ही था, जल्द किसी भली लड़की से ब्याह और पत्नी की निगरानी। पर आर्चर धीरे धीरे समझने लगा था कि यूरोप के ज्यादा पेचीदा समाजों में प्रेम के प्रश्न शायद इतनी आसानी से खाचों में न बटते हों, धनी और बेकार समाज में कहीं ज्यादा हालात जन्म लेते होंगे। और ये भी हो सकता था कि कोई संवेदनशील संकोची स्त्री हालात के दबाव से नरी बेबसी और अकेलेपन से ऐसे रिश्ते में जा पड़े जिसे पुराने नियम माफ करना नहीं जानते। घर पहुंचकर उसने काउंटेस ओलेंस्का को कुछ पंक्तियां लिखी, कल वे उसे कब मिल सकेंगी, और हरकारे से भिजवा दी। थोड़ी देर में जवाब आ गया, काउंटेस कल सुबह वान डेर लॉयडन दंपति के साथ सप्ताहांत के लिए स्क्वाइटर क्लिफ जा रही हैं, पर आज रात भोजन के बाद अकेली होंगी। जवाब कुछ मुड़ी तुड़ी आधी शीट पर था, न तारीख न पता, पर लिखावट दृढ़ और बेरोक थी। स्क्वाइटर क्लिफ के भव्य एकांत में सप्ताहांत की कल्पना पर आर्चर को हंसी आई, पर तुरंत ही उसने सोचा कि वहीं किसी भी और जगह से बढ़कर वे उन दिमागों की ठंडक महसूस करेंगी जो किसी अप्रिय चीज को छूने तक से इनकार कर चुके हैं।
ठीक 7 बजे आर्चर मिस्टर लेटर ब्लेयर के घर पहुंचा।
उसे खुशी थी कि भोजन के तुरंत बाद उठ जाने का बहाना है। सौंपे गए कागजों से वो अपनी राय बना चुका था और वरिष्ठ साझेदार से उस पर गहराई में उतरने की इच्छा नहीं थी। मिस्टर लेटर ब्लेयर विधुर थे और दोनों ने एक पुराने अंधेरे कमरे में धीरे धीरे भरपेट भोजन किया। दीवारों पर पीले पड़ चुके चित्र टंगे थे, चैथम की मृत्यु और नेपोलियन का राज्याभिषेक। साइड बोर्ड पर शेरेटन छुरी बक्सों के बीच ओ ब्रियो की एक सुराही और लैनिंग परिवार के पुराने पोर्ट की एक मुवक्किल की भेंट, जिसे उड़ाऊ टॉम लैनिंग ने सैन फ्रांसिस्को की बदनाम मौत से कुछ पहले बेच दिया था। परिवार को तहखाने की बिक्री उस मौत से कम शर्मनाक लगी थी। मखमली सीप शोरबे के बाद खीरे के साथ शैड मछली, मकई के पकौड़ों के साथ भुना नया टर्की और फिर करोंदे की जेली और अजवाइन डंठल की मेयोनेज के साथ कैनवस बैक बत्तख आई। दोपहर को चाय सैंडविच खाने वाले लेटर ब्लेयर रात का भोजन इत्मीनान से करते और मेहमान से भी वही चाहते। आखिर सारी रस्म पूरी हुई, मेज पोश हटा, सिगार सुलगे, मिस्टर लेटर ब्लेयर कुर्सी से टिके, पोट पश्चिम की ओर सरकाया और पीठ कोयले की सुहानी आग की ओर करके बोले, पूरा परिवार तलाक के खिलाफ है।
और मेरी राय भी यही है। आर्चर ने उसी क्षण जान लिया कि वो दूसरी तरफ खड़ा है। पर क्यों महोदय, अगर कभी कोई मामला बनता था तो भला किस काम आएगा। वे यहाँ है, वो वहाँ, बीच में अटल टिक। जो रकम उसने अपनी मर्जी से लौटाई उससे $1 ज्यादा उन्हें कभी नहीं मिलेगा। वहाँ के मनहूस विवाह अनुबंध सब कसकर बांध देते हैं और उनके ढंग से देखे तो ओलेंस्की ने दरिया दिली ही दिखाई। वो उन्हें खाली हाथ निकाल सकता था, आर्चर ये जानता था, इसलिए चुप रहा। कहते हैं मिस्टर लेटर ब्लेयर आगे बोले, उन्हें पैसे की परवाह भी नहीं, तो फिर जैसा परिवार कहता है बात कुरेदने से क्या फायदा। घंटे भर पहले घर से निकलते समय आर्चर बूढ़े की राय से पूरी तरह सहमत था, पर इस अघाय स्वार्थी उदासीन बूढ़े के मुंह से निकलते ही वही तर्क अचानक उस समाज की पाखंडी आवाज लगा जो बस अपने को अप्रिय चीजों से बचाने में लगा है। मुझे लगता है ये फैसला उन्हीं का है। हूँ, सोचा है अगर वे तलाक चुन ले तो क्या होगा। पति की चिट्ठी की धमकी की बात कर रहे हैं, उसका क्या वजन, एक भड़के हुए नीच की धुंधली तोमत भर। हाँ, पर अगर उसने मुकदमे का संजीदगी से सामना किया तो बहुत अप्रिय चर्चे उठ सकते हैं।
अप्रिय, आर्चर फट पड़ा। लेटर ब्लेयर ने अचर्च से देखा और युवक समझ गया कि समझाना बेकार है। उसने आज्ञाकारी भाव से सिर झुकाया और प्रतीक्षा की। तलाक हमेशा अप्रिय होता है, सहमत है ना? कुछ देर चुप रहकर मिस्टर लेटर ब्लेयर ने पूछा।
स्वाभाविक है, आर्चर बोला। तो मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ, मिंगट परिवार आप पर भरोसा कर सकता है। अपना असर इस्तेमाल कीजिए कि वे ये विचार छोड़ दें। आर्चर हिचकिचाया। काउंटेस ओलेंस्का से मिले बिना मैं वचन नहीं दे सकता।
मिस्टर आर्चर, मैं आपको समझ नहीं पाता। क्या आप ऐसे परिवार में ब्याह करना चाहते हैं जिस पर तलाक का मुकदमा लटका हो? मेरी समझ से उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। मिस्टर लेटर ब्लेयर ने पोर्ट का गिलास रखा और युवा साझेदार पर सभी आशंकित निगाह टिकाई। आर्चर समझ गया कि जिम्मा छिन सकता है और जाने क्यों ये उसे नागवार लगा। काम हाथ आ चुका था, छोड़ने का इरादा ना था, सो उसने मिंगट परिवार के कानूनी जमीर उस कल्पनाहीन बूढ़े को तसल्ली देनी चाहिए।
निश्चिंत रहिए महोदय, आपको बताए बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मेरा मतलब केवल ये था कि श्रीमती ओलेंस्का को सुने बिना मैं अपनी राय नहीं देना चाहता। लेटर ब्लेयर ने न्यूयॉर्क की श्रेष्ठ परंपरा के योग्य इस सावधानी पर संतोष से सिर हिलाया। आर्चर ने घड़ी देख किसी वादे का हवाला देकर विदा ली।